नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज की लाइव पेशकश फेसबुक और यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह है बी द चेंज सीरीज। पिछले कई दिनों से हम आप सभी के घरों में आपसे मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हम आपके बारे में, आपके जीवन में जुड़े हुए जो चीजें चल रही हैं इस बदलाव के दौर में, इसमें हम आपके साथ रहें। ब्रह्मा कुमारीज के साथ देने की इस छोटी सी पहल में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने दिल के दरवाजों को तो खोल ही रहे हैं, मगर अपने घर के दरवाजों में भी आप हमें अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। बहुत सारी दिल की बातें आपने पिछले कई दिनों से हमारे साथ की हैं, अपने सवालों को बेझिझक हमसे पूछा है। जहां मार्गदर्शन और मदद की जरूरत आपको चाहिए है, वहां पर हमारे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स ने इसे देने की कोशिश की है। तो आइए, आज के इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारे साथ मास्टर ऑफ मेडिटेशन और स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी हैं। मनोरमा दीदी जी पूरे भारतवर्ष में अनेकों सम्मेलनों में, कार्यक्रमों में, राजयोग शिविरों में, ऐसे लाखों कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर बनने की प्रेरक बनी है। साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अनेकों दशकों के साथ जो इनका जुड़ाव रहा है, वहां पर जो ब्रह्मा कुमारी में लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं उनके ये नियमित शिक्षिका हैं और समय समय पर लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और राजयोग की शिक्षा देते हैं। बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, एक जानी मानी कवियत्री हैं और ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक प्रभाग की भी ये अध्यक्षा हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत और इनसे पूछते हैं अपने दिल के सवाल। दीदी जी, स्वागत है आपका।
ओके, थैंक यू।
दीदी, आप प्रयागराज से, इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं आज ब्रह्मा कुमारीज के स्पेशल लाइव में। फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ब्रह्मा कुमारीज के अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी बहुत सारे दोस्त हमें लाइव देख रहे हैं और वो सवाल भी पूछेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे सभी दोस्तों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं या बस शेयर करना चाहते हैं कोई चीज, तो भी आप बेझिझक कर सकते हैं। इस वीडियो के लाइव कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्राइवेट हैं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते और फिर भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप ऐसे सवालों को सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर लाइव क्वेश्चंस के रूप में भेज सकते हैं। तो चलिए करते हैं दीदी से बातचीत। दीदी, बदलाव का ये दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस बदलाव को अपने अंदर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग खुद बदल रहे हैं, कुछ लोग अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बाहर के बदलाव के साथ अपने आप को बदलना कभी कभार आसान होता है, कभी कभार मुश्किल होता है। कभी कभार ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि भाई चलो एक दिन चीजें सही हो जाएंगी और तब जाके मतलब हम वापस नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ऐसी उम्मीद करके चलते चलते कभी कभार हम आज जो हमारे सामने चीजें हैं उन चीजों को इग्नोर करने लग जाते हैं, उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो आप क्या समझती हैं कि जब ऐसा चैलेंजिंग समय रहता है, जब मुश्किल घड़ियां होती हैं, जब ऐसा समय चल रहा है जब हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या हम उम्मीद करके चलते रहें या फिर आज के इस मोमेंट में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में हम ज्यादा सोचें?
बहुत ही सुंदर बात है। देखिए श्रीनिधि भाई, जो आपने अभी हमसे कहा कि हम आने वाले के लिए, समय के लिए आशावान हैं, ये एक अच्छी बात है कि हम आने वाले समय के लिए आशावान हों, उम्मीदों से भरे हुए हो, किंतु उन आशाओं के सहारे हम जीते रहें और वर्तमान को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो आनंद नहीं आएगा। वर्तमान भी हमारा उतना ही प्रफुल्लित होना चाहिए, उतना ही खुशबूदार होना चाहिए जितनी खुशबूदार रोशन सुबह का इंतजार है। तो क्यों ना हम वर्तमान को भी बहुत अच्छी तरह जिए। उसके लिए बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व का धनी होना बहुत आवश्यक है। हर परिस्थिति के साथ अगर हम पानी की तरह बहना सीख लें, जैसे पानी को जब कभी छोड़ते हैं तो वो समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालता हुआ अपना रास्ता तलाश कर लेता है, वैसे ही हम सबका जीवन इतना सरल और सहज पथ का अनुगामी हो कि वो बहता हुआ, प्रवाहित होता हुआ चले कहीं अटकाव नहीं, कहीं भटकाव नहीं। अध्यात्म भी हमें यही सिखाता है कि हम जीवन की सरलता को चयन करें और बहुत प्रसन्न भाव से प्रवाहित होते चलें। अटक जाएंगे तो निस्संदेह भटक जाएंगे। आने वाली सुबह, जिस सुहानी सुबह का इंतजार कर रहे हैं, है कि नहीं, हमारे उसमें, उसके इंतजार में हम वर्तमान को क्यों गंवा दें?
बहुत ही अच्छी बात कही दीदी कि वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सुबह आएगा ये उम्मीद करना अच्छी बात है, बट इस मोमेंट में सहज और सरल होने के बारे में आपने बात कही। हमारे पहले इस सवाल जो एक हमारे दोस्त हैं वो जुड़े हैं यूट्यूब से और इनका नाम है धवल। धवल सोनी सवाल पूछते हैं, खुद में क्या बदलाव पे कायम, खुद पे किए बदलाव पे हम कायम कैसे रह सकते हैं? एक हमारे अंदर स्थिरता आती है फिर चली क्यों जाती है, ये सवाल पूछते हैं।
बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम अपने पास्ट में जिस तरह से जीने के आदि हैं और हमें वर्तमान में वो सब चीजें मुहैया नहीं है, वो माहौल नहीं उपलब्ध है कि हम उस तरह से जिएं, तो हम चेंज लाते हैं। चेंज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है विवश होकर परिवर्तन करना और एक होता है वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करके परिवर्तन होना। तो जब हम कभी विवश होकर परिवर्तन करते हैं, परिस्थितियों से समझौता करते हुए परिवर्तन करते हैं, तो उस परिवर्तन में कई बार बाधाएं आती हैं और हमारा जो प्राचीन, हमारा जो रवैया जिसे हम कहेंगे पास्ट का है, वो खींचता है और वो जब हमें खींचता है तो हम कायम नहीं रह पाते। लेकिन अगर हमें लगता है कि अभी हमें इसी माहौल में जीना है, अभी हमें इन स्थितियों में जीना है, तो हम सहज अपने मन को तैयार करते हैं। अगर हमें किसी विशेष बेस पर निरंतर चलना है तो हम अपने मन को एक साहस संबल देते हैं कि अब जीवन इसी पथ पर चलेगा और बिना इस पर चले गुजारा नहीं है। आने वाली सुबह तभी मिलेगी जब हम इस पर चलकर उस पार पहुंचेंगे। तो वो समझौता सहज होता है, मन को समझा बुझाकर होता है, तो मन नहीं भागता। जब मन के ऊपर कोई चीज लादी जाती है, लोड की जाती है, तो वो भागने की कोशिश करता है।
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो चीजें हुई हैं, जो बदलाव लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में ये नहीं सोचे कि हम ये कितने दिन कर पाते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो कल हमारे एक मित्र ने पूछा था, जिसको हम कल के कार्यक्रम में नहीं शामिल कर पाए थे। दीदी, सवाल ये है कि ये पूछते हैं कि जब भी हम कोई मोटिवेशनल चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम बहुत सारी अच्छी बातें सुन रहे हैं, जब मैं ये वीडियो देखती हूँ या फिर मैं ये वीडियो सुनती हूँ, उस टाइम पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं कल से ही ये चीज करने लगूंगी, और फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन जब खत्म हो जाता है, जब वो वीडियो खत्म हो गया, उसका असर थोड़े दिनों में खत्म हो गया, तो फिर मैं वापस लौट जाती हूँ उस चीज पे। तो ऐसे बार बार मुझे मोटिवेशन की जरूरत जैसे महसूस होती है, क्या ये सही रवैया है कि बार बार मुझे ऐसा सुनना पड़ेगा?
जब पुनरावृत्ति होती है और वो हमें परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है, तो निसंदेह हमें उससे सुनना चाहिए। और रही बात ये कि हम मिस कर जाते हैं, सुनी हुई बातों को अच्छी लगती हैं, पसंद करते हैं, परिवर्तन करते हैं, लेकिन पुनः पुनः भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनसे हमारा जुड़ाव है। जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उनको बहुत लंबे अंतराल तक जब हम उनको पास ऑन करते हैं, उनको व्यवहारिक जगत में जीते हैं, तो निसंदेह वो पुरानी चीजें खींचती हैं, किंतु हमें उन पुरानी बातों को बहुत अच्छी तरह फाइल क्लोज करके रख दें और नई फाइल शुरुआत करें। जैसे कभी कभी होता है ना, किसी केस की फाइल को क्लोज कर दिया जाता है और कहते हैं अभी नहीं, अभी वो उसमें FIR लग गया, फाइनल हो गया, FR लग गया, फाइनल रिपोर्ट लग गई है, वो दोबारा नहीं खुल सकता। तो हम अपने मन को समझाएं, देखो भाई अभी तक जो प्रसंग चल रहे थे तुम्हारे साथ, कुछ और स्थितियां थी, तुम बहुत फ्री थे, आजाद थे, तो वो सब कर सकते थे, लेकिन अभी वो संभव नहीं है, उसको क्लोज कर दिया गया है। अब एक नए चैप्टर से आओ, नई शुरुआत करते हैं। कोई भी गेम्स है, हम गेम खेलते रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बाई दी वे कोई इंजरी हमारे उसमें हो गई और हमारी हाथ की कलाई बहुत तेजी से मुड़ गई, अब हमारा हाथ बैट पकड़ने के लिए तैयार नहीं, और हमें डॉक्टर्स ने भी बता दिया कि अगर हम पकड़ेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, तो निश्चित है कि हम उस बैट को छोड़ देंगे और कोई नए गेम की ओर अग्रसर होंगे। तो जिंदगी एक खेल का मैदान है, आइए कोई नया खेल शुरू करते हैं। ऐसी क्या बात, ऐसा थोड़ी है कि हम खेल से ही बात खड़े होंगे। तो हमारे जिस श्रोता ने ये प्रश्न किया है, उन्हें हम कहना चाहेंगे कि जिंदगी के मैदान में आइए कुछ नया शुरू करते हैं, ये याद रखें।
बहुत अच्छी बात है दीदी कि अक्सर ये मान लेना कि हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं तो अपने आप को ये चीज बताना जरूरी होता है। जैसे मोटिवेशनल वीडियोस के साथ ये सिस्टर जिन्होंने ये सवाल पूछा था, मैं उनका तात्पर्य समझता हूं कि थोड़े टाइम के लिए तो मोटिवेशनल पुश मिल जाता है हमें, बट थोड़े टाइम के बाद जब वो पुश हट जाता है तो फिर हम वापस लौटने का मन करते हैं, तब हमें अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। एक और सवाल है, सीमा वर्मा जी हैं हमारे साथ, फेसबुक पर जुड़े हैं, और वो पूछते हैं, पीपल कंटिन्यू टू डू रॉन्ग एक्ट्स नोइंगली बिकॉज एज दे आर योर कर्मा दे विल कम बैक टू यू, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, बट इफ आई फेस द रिजल्ट ऑफ बैड कर्मा मे बी इन नेक्स्ट लाइफ देन पीपल कंटिन्यू विदाउट फियर, विच रिजल्ट्स ऑफ ऑल कर्मा इज मोर इन वन्स ओन लाइफ। ये पूछते हैं कि बहुत बार लोग जानबूझ के गलतियां करते हैं, जानबूझ के गलत काम कर रहे होते हैं, और अक्सर वो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इस कर्म का फल बुरा मिलने वाला है तो वो अगले जन्म में मिलेगा, तो उनको लगता है वो तब की तब देखी जाएगी। तो कहते हैं क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अगर इस कर्म का फल अगर इसी जन्म में मिल जाए तो शायद लोग बेहतर हो जाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे।
प्रश्न बहुत अच्छा है बहन वर्मा जी का। देखिए महाभारत में एक प्रसंग आता है और बहुत ही प्रसिद्ध बात है ये, कि जब पूछा गया था दुर्योधन से कि भाई दुर्योधन तुम सब जानते हो, विद्वान भी हो और तुमने अध्ययन भी साथ साथ किया है, तुम जानते हो कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो फिर क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मेरी निवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म जानता हूँ कि अधर्म हो रहा है, न जाने कि कौन है को अपी जो मेरे हृदय में स्थित है और मुझे प्रेरित करता है। तो सत्य ये है कि जिस संसार में हम जी रहे हैं वहाँ सतो रजो तमो तीनों प्रकार की संपदाएं विद्यमान हैं, और जब तामसिकता प्रबल होती है तो जानते हुए भी हम बार बार स्लिप कर जाते हैं, और जब हम स्लिप कर जाते हैं तो वो गलत काम हमसे होने लगता है, पुनरावृत्ति होने लगती है, या यूं कहिए कि कुछ थोड़ा सा टेस्ट आने लगे, इसलिए वो गलत काम बार बार हो रहा है। हम ये सोचें कि उस कर्म का फल दंड हमको वर्तमान में नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, हमको वर्तमान में भी मिलता है, हम समझ नहीं पाते, परिस्थितियां प्रकृति हमारी काया कई बार हमें कष्ट देती है, और उस समय हम ये सोचते हैं हाँ क्या करें कुछ हो गया है, नहीं, इसके पीछे कोई कारण है, ये अनायास नहीं हो गया, कारण का कार्य और परिणाम से संबंध है और वो हमें मिलता है, ऐसा नहीं है कि सारे कर्मों का फल भविष्य में ही मिलता है, हमें अनायास खुशियां मिलती हैं, हमें अनायास कष्ट मिलता है, हमें अनायास दुख मिलता है, इनका सबका हमारे कर्मों से गहन संबंध है। अब चूंकि उस जगत नियंता की ओर से उनका लेखा जोखा होता है, आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, वो बे आवाज होती है, लेकिन जब पड़ती है तो हम कराह भी नहीं पाते।
ये जो बात आपने कही, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने, आजकल के जनरेशन के लोगों ने इसको कम ही सुना है कि परमात्मा की लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती। तो कर्म के बारे में ये जो चीज आपने बताई कि ये सोच लेना कि भाई फल मिलता ही है हमेशा, उसके परमानेंस के बारे में, वो कब मिलता है इसके बारे में सोचने से ज्यादा ये है कि अगर वो आज मिलने लगे तो कितना कष्ट होगा। अगर ये सोच के अगर हम अच्छे कर्म करने के बारे में सोचें तो शायद चीजें आसान हो सकती हैं। दीदी कुछ और सवाल हैं जो मैं लेना चाहता हूं। अगला सवाल है लता पिल्लई जी पूछते हैं, लता जी का सवाल है, ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। कैन वी चेंज द नेचर ऑफ एग्रेसिव एडमेंट शॉर्ट टेम्पर ऑफ आवर चिल्ड्रन? इवन इफ आई आस्क हिम टू डू मेडिटेशन एंड गो थ्रू योर वीडियोज ही डिनाइज। आई एम ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानीज एंड गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम देम, बट माय सन अवॉइड्स इट। लता जी का सवाल बहुत ही आम है जो बहुत सारे लोग आजकल फेस कर रहे हैं। बच्चे जो हैं थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़े एडमेंट हो रहे हैं, वो माता पिता की बात नहीं सुनते, आज्ञाकारी नहीं है और शॉर्ट टेम्पर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और लॉकडाउन के चलते तो बहुत ही ज्यादा ये देखने को मिला। और वो कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कुछ सकारात्मक सुने, कुछ पॉजिटिव सुने, कुछ मेडिटेशन सीखे, कुछ अच्छी बातें सुने, लेक्चर्स सुने, बट बच्चे अवॉइड करते हैं इस चीज को, उनका बेटा स्पेसिफिकली इस चीज को अवॉइड कर रहा है। तो लता जी का ये सवाल है कि मैं कैसे उन्हें प्रेरित करूं कि वो अच्छी चीजें सीखें, सुने, मेडिटेशन करें इत्यादि।
बहुत ही सुंदर सवाल है और ये भी सच है कि बच्चे आजकल की जनरेशन के थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। उसके पीछे हम स्वयं को खड़ा करके देखें, हमारा भी तो बचपन गुजरा है ना, हमें जो चीजें अच्छी लगती थी हमने लता जी वही किए हैं, ध्यान रखिएगा, और कई बार कुछ कुछ इधर उधर करके भी किए हैं। मम्मी पापा पुराने सिद्धांतों वाले थे, उन्हें समझाने की कोशिश की है और उन्हें उपयोगिता बताते हुए अपनी बात मनवाने की कोशिश की है। चलिए आज के बच्चे उस तरह की कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने आप को व्यक्त कर देते हैं क्रोध के रूप में, जोश के रूप में, किसी और रूप में। तो हमें वर्तमान समय में ये देखना चाहिए कि उनकी अभिरुचि क्या है, वो क्या चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं उसी उनकी चाहना को सकारात्मक रूप दे दें। अगर हम उनके उस टाइम पास प्रोग्राम को कुछ क्रिएटिव बना दें, स्पिरिचुअलिटी डायरेक्ट थोपने की जरूरत नहीं, आध्यात्म कभी भी थोपा नहीं जा सकता, आप समझ रहे होंगे, आई मीन लाइक द पेस्ट, अगर हम किसी चीज को पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट करने से बात बनती नहीं। उनकी अभिरुचि क्या है, वो कैसा सोचते हैं। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आज कुछ मीडिया को लेके मैं यूं ही बोल रही थी और तो मैंने कहा कि ये पर्सन जो होते हैं क्या क्या करते हैं। एक भाई थे, वो रेडियो डायरेक्टर के यहाँ प्रयाग की बात है, रात दिन बैठते थे, 11-12 बजे तक बातचीत करते थे, चाय वाय पीते थे, बड़े क्लोजली मना फ्रेंड रिलेशनशिप था उनका और फ्रेंडशिप में सब कुछ चलता है। बीमार पड़ गए, वो बहुत बीमार पड़ गए और उनको किसी विशेष ब्लड ग्रुप की आवश्यकता थी। तो आकाशवाणी पर इसका प्रसारण हुआ कि भाई इस तरह से रेडियो डायरेक्टर बीमार है या यात्री और उन्हें ब्लड ग्रुप की जरूरत है। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि इसको न्यूज का मुद्दा बनाया और ये कहा कि एक डायरेक्टर बीमार है इसलिए अनाउंसमेंट हो रहा है। आई फील वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। उस न्यूज को अपन सकारात्मक भी तो दे सकते थे कि ये आकाशवाणी द्वारा बहुत सुंदर सकारात्मक कदम है, अगर किसी भी असहाय को और किसी भी गरीब को अगर ऐसे समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है और हम प्रसारण के माध्यम से जन जन तक अप्रोच कर सकते हैं तो न जाने कितने लोगों को जीवन दान मिल सकता है। हम उस न्यूज को पॉजिटिवली दे सकते थे, मीडिया आपका है, लेखनी आपकी है, अखबार आपका है, तो पॉजिटिवली देने से न जाने कितनों को फायदा हो जाता। निगेटिवली देना कि बड़े आदमी है इसलिए अनाउंसमेंट हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चे का काम खेलना है, वो खेलने जाएगा। मम्मी पापा नहीं चाहते कि बाहर खेलने जाए तो इंडोर गेम्स की व्यवस्था करते, वो ये देखते हैं कि बाहर का माहौल सही नहीं, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो बच्चों को घर में ही रखना है, उन्हें बाहर नहीं जाने देना। तो आप घर में उनको बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं, छोटे हैं बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, खाने में रुचि रखते हैं, बहुत सारी डिशेज बनाते हैं, और किसी कार्य में रुचि रखते हैं, तो आप उनकी उस रुचि को देखते हुए उसको सकारात्मक बनाएं, उसको फ्रूटफुल बनाएं, लता जी वह आपके इशारों पर चलने लगेंगे, करके देखिए।
बहुत ही अच्छी बात कही दीदी आपने, ये बहुत बार हम ये थोपना चाहते हैं और उन्हें फोर्स करना चाहते हैं तो आजकल के बच्चे इस चीज को नहीं समझते। और ये भी बात सही है कि ये अलग जमाना है, हमारे जमाने में हमने अलग फ्रीडम को एंजॉय किया है, अपनी तरीके से चीजें की है, हालांकि हम माता पिता को नहीं बता के चीजें करते थे, मगर आज का जनरेशन ऐसा है कि वो सामने मुंह पे बता देता है कि हाँ हम यही करेंगे। तो इस बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलने की जरूरत है, और शायद इसीलिए हम इस सीरीज का नाम वी द चेंज रखते हैं, क्योंकि बदलाव को हम देख तो रहे हैं बट अपने आप को भी उस बदलाव का हिस्सा बना लेना, खुद को बदल लेना बहुत जरूरी है, और हम खुद वो बदलाव बन जाएं तो दूसरों में बदलाव देखना आसान होता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं दीदी। सवाल अमोल खर्चे जी पूछते हैं कि अगर हमें कोई बुरी आदत है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं, कुछ लोगों को लत हो सकती है, कुछ लोगों को सिर्फ बुरी आदतें हो सकती हैं, किसी के पीठ पीछे बोलने की आदत हो सकती है, या फिर झूठ बोलने की आदत हो सकती है, या फिर अपनी गलतियों को ना मानने की आदत हो, किसी को बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ऐसे बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं। तो लोग उन बुरी आदतों से बाहर निकलना चाहते हैं, बचना तो चाहते हैं बट मुश्किल होता है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर हमें बदलना ही है तो हम कैसे बदलें? ऐसा अमोल जी पूछते हैं।
अमोल जी, अगर जिगर में बदलने की तमन्ना है तो कोई मुश्किल नहीं है। हम भगवान की बगिया के बहुत सुंदर फूल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप समर्थ हैं। एक इंसान है जो चाहे वो कर सकता है। दुनिया में हर एक को ये इजाजत नहीं है कि वो जो चाहे वो कर ले, तो ये सामर्थ आप में है। हमारे जीवन में कुछ बदलाव प्रकृति लाती है, कुछ बदलाव हमारा पालन पोषण लाता है, कुछ बदलाव हमारे दोस्त लाते हैं, कुछ बदलाव हमारे पद गरिमा और सोसाइटी लाती है। हमें अपनी हैबिट्स में बदलाव लाना। विचार कीजिए, ये शुरू कब हुई थी? क्या हम शुरू से ही ऐसे थे? जैसे अभी हमारे भ्राता श्री निधि जी ने कहा कि किसी को पीने की हैबिट, किसी को सिगरेट की हैबिट है, किसी को कुछ कहने सुनने की हैबिट है, ये शुरू कब हुई? इम्प्रेशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन, माना पहले पहले आप देखिएगा, जब भी कभी ये आदतें शुरू हुई हैं तो इनके पीछे कोई इम्प्रेशन जरूर था। हमने कभी किसी को देखा हो, अनायास उसकी छवि हमें बड़ी मोहक आकर्षक लगी हो, और हमने सोचा हो कि हम भी जब बड़े हो जाएंगे लाइक दैट इसी तरीके से निकलेंगे गाड़ी लेकर और सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए। वो जो अनचाहे एक छवि मेरे मन में बैठ गई, वो उस बड़े होने का इंतजार करती है, कब मैं बड़ा हो जाऊं, कब ये करूं, है ना? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब इम्प्रेशन बन जाता है मेरे मन में तो मुझे करना भी, अगर उसमें कोई आड़े आता है, अवरोध बनता है, तो हम रिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं, माना उसका पैर पकड़ के खींचना शुरू करते हैं। कोई छोटा भाई आया, उसने शिकायत कर दी, मम्मी आज भैया को मैंने पीते हुए देखा था, बोला गलत बोल रहा है, मेरा फ्रेंड था मेरे साथ, हाँ तो बाद में उसको बोलते रुक किनारे मिलेगा तब बताऊंगा मम्मी के आगे तुम्हें। तो ये क्या है, माना रिप्रेशन, ये तो मैं घर की बात कर रही हूँ लेकिन सोसाइटी में भी ऐसा होता है, रिप्रेशन होता है, उसके बाद कई बार डिप्रेशन होता है, कई बार रिग्रेशन होता है। तो ये जो चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, उनके कारण हम किसी न किसी हैबिट के शिकार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारी लाइफ में कोई गोल है, टारगेट है, और हम समझ रहे हैं कि उस टारगेट की ओर हमको बढ़ना है, वो अचीवमेंट है हमारी लाइफ का, हमें वहां तक पहुंचना है, तो हम उस टारगेट के लिए ए टू जेड जितने स्टेप्स उठाएंगे, एक ही लगन होगी, एक ही रास्ता होगा, एक ही मुद्दा होगा, एक ही थिंकिंग होगी और हम उस ओर बढ़ते चले, तो रिग्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा। ये जो किसी के पीछे हम कुछ कहना चाहते हैं, बॉस को जाके बताना चाहते हैं, सर इस काम को तो मैं कल ही पूरा कर लेता, मगर मैं क्या बताऊं सर, वो ऐसा हुआ ना, उनकी वजह से ये काम रुक गया। दुनिया की कोई वजह हमारी गति में अवरोध नहीं बन सकती अगर टारगेट सीधा है। कई बार जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है और फिर अब क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था, बॉस की निगाहों में मेरी छवि धूमिल हो गई है और वो चीजें डिप्रेशन गया, घर वालों की नजर में मेरी इमेज खराब हो गई है, फिर मैं तलाश करता हूं कि किसके ऊपर डाल दूं, तब मैं किसी थर्ड पर्सन को निकाल के सामने लाता हूं, तब मैं कोई कारण खोजता हूं या खोजती हूं कि इनका नाम लेकर के निकल जाऊं, तब ये चीजें धीरे धीरे, एक आध बार अगर निकलने का रास्ता मिल गया तो फिर दोबारा फिर वही शॉर्टकट, तिबारा फिर वही शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट जो हम दोबारा तिबारा यूज करते हैं, ये हमारी लाइफ में हैबिट का रूप ले जाए। तो रास्ता क्लियर हो, साफ हो, राजपथ पर चलिए, राजपथ बहुत क्लियर होता है, शॉर्टकट कभी क्लियर नहीं होते, कब धोखा दे देंगे पता नहीं। तो ये हैबिट्स जिसके सहारे हम गम गलत करना चाहते हैं, जिसके सहारे हम अपनी छवि को ऊंचा बनाना चाहते हैं, ये शॉर्टकट अच्छे नहीं है। और जब हमारी फेयर वर्किंग होती है, आज नहीं तो कल बदलेंगे बादल, वो सूर्य दिखाई देगा और आप उस आदत पर निस्संदेह काबिज हो चुके होंगे। मेरी बधाई आपको एडवांस में कि आप संकल्प तो करिए, सफलता आपके साथ।
बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही दीदी कि संकल्प करना जरूरी है, अगर आप विश्वास के साथ वो एक पहला कदम बढ़ाएंगे तो फिर आगे आगे आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत मदद मिलती भी है। सचिन जी का सवाल है, सचिन पूछते हैं, ओम शांति दीदी, कई बार जानते हुए भी गलत काम करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे से ऐसा ना करूं पर नहीं कर पाता हूं, ये पूछते हैं। सचिन जी का सवाल है, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसा बहुतों के साथ होता है मैं मानता हूं कि लोग भगवान से मदद मांगते हैं कि भाई आगे हमसे ऐसे गलती नहीं हो, बट जब वो गलतियां हो जाती हैं तो कभी कभार उनका आस्था जो है, उनकी जो विश्वास है वो भी थोड़ा हिलने लगता है, डगमग होने लगती है। तो कैसे करें कि जब हमसे जानते हुए तो हम नहीं करना चाहते बट हो जाती है गलतियां, तो पश्चाताप में ज्यादा चले जाते हैं, तो उसके बारे में क्या किया जाए, सचिन जी का सवाल।
सचिन जी, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। मानव कहते हैं त्रुटियों का, भूलों का पुतला है, गलतियां तो होती ही, लेकिन उन गलतियों को लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पुनरावृत्ति ना हो, वो गलती हमसे दोबारा ना हो, तो हम परमात्मा से प्रेयर करते हैं, सहारा लेते हैं। और सच पूछिए, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमने उस जगत नियंता की उंगली थाम रखी है, हमसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान हमारा साथ। एक बार गलती हो गई, दो बार हो गई, हमने समझ लिया कि इस रास्ते पर फिसलन है, शायद काई है, पानी जब रुक जाता है तो उस जगह काई हो जाती है, और जब काई जम जाती है तो पैर रखने के पहले आदमी कई बार सोचता है, अगर इधर से गया फिर स्लिप हो जाऊंगा। तो हम अपने रास्ते बदल, मौसम के मुताबिक छाते इस्तेमाल करते, अम्ब्रेला लगाते, तो परमात्मा का हाथ पकड़ना, परमात्मा का साथ पकड़ना, उसकी छत्र छाया में रहकर जब हम जीने का प्रयास करते हैं तो वो कार्य पुनरावृत्ति की ओर नहीं होता, बल्कि ये जो बात कि न जाने कौन मेरे हृदय में स्थित है, दुर्योधन के हृदय में स्थित था। देखिए, सारे महाभारत में एक का सारथी है सज्ञान, स्वयं योगीराज कृष्ण को माना जाता कि वो अर्जुन के साथी थे। अर्जुन निश्चिंत था, जहां ज्ञान है, जहां पर सारथी मजबूत है, वहां अंधकार की कोई संभावना नहीं, और जहां सारथी ही अज्ञान है तो जहां अज्ञान है निसंदेह वहां अंधकार होगा, और जहां अंधकार होगा वहां कहां स्लिप कर जाएंगे कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है कि हम भगवान पर भी भरोसा करके चलते नहीं, अच्छी तरह हाथ पकड़ाइए ना छोटा बच्चा, अगर अपने नन्हे हाथों से हाथ पकड़ता है तो हो सकता है कि वो उंगली छूट जाए, लेकिन जब छोटे बच्चे का हाथ पापा या मम्मी खुद पकड़ लेते हैं तो फिर नहीं छोड़ते हैं, चाहे जितनी भीड़ हो। तो भगवान को अपना हाथ पकड़ा दीजिए, जब भगवान हमारा हाथ पकड़ लेगा तो किसी भी तरह के आंधी तूफान में भगवान छोड़ने वाला नहीं है, और ये जो भूल होती है इसकी भी पुनरावृत्ति होने की संभावना कदापि नहीं। आशा करती हूँ कि आप पहली बात समझ आई होगी।
जैसे आप ये बात कह रहे थे दीदी, मुझे एक गीत याद आया जो रेडियो पे, ब्रह्मा कुमारी के रेडियो स्टेशन पे एक गीत सुनने को मिलता है कि सब सौंप दो सब प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो अगर आप सौंप देते हैं, आप अपना हाथ दे देते हैं, तो फिर चीजें सरल हो ही जाती हैं। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं दीदी। सवालों के इस सिलसिले में अगर हमारे दोस्त हैं जो कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं, कुछ फीडबैक लिखना चाहते हैं, या कुछ ऐसा ही हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप इस लाइव वीडियो के कमेंट सेक्शन में YouTube पर, Facebook पर, दोनों जगह लिख सकते हैं, और हम आपके कमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाएंगे भी और सवाल लेने की कोशिश भी करेंगे। YouTube से हमारे साथ उर्मिला कुमारी जी जुड़ी हैं। उर्मिला जी का सवाल है, हाउ कैन वी फ्री अवर माइंड इन आर डीप गिल्ट मेजर मिस्टेक्स इन आर लाइफ, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। और वो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन भी फील करती हूँ, ऐसा कहते हैं। ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जीवन में को अगर कुछ बड़ी गलतियां कर लेते हैं तो उसका गिल्ट बना रहता है, गिल्टी कॉन्शियस हो रहे होते हैं, उसके कारण हम कुछ और पॉजिटिव स्टेप नहीं ले पाते, कुछ और अच्छा नहीं कर पाते, वो गिल्ट हमेशा खाता रहता है। तो उस चीज से हम बाहर कैसे आए, और इसकी वजह से भी कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो क्या किया जाए पूछते हैं।
उर्मिला जी ने बहुत अच्छी बात कही है, आजकल के सीजन में ये सीजन है, और इसमें अक्सर करके एक तो तन्हाइयां मिल रही हैं हम लोगों को बहुत ज्यादा, और उन तन्हाइयों में निश्चित है कुछ साइकोलॉजिकल मोड हैं हमारे यहाँ, माना इड इगो और सुपर इगो। हमने अगर साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो तो आप देखेंगे कि एक इगो होता है, एक सुपर इगो होता है, बीच में एक पार्ट होता है हमारे मन का इड, और ये दोनों में समझौता कराता है। ईगो बहुत हाई फाई जाना चाहता है, सुपर ईगो आध्यात्मिक बनाना चाहता है, ना हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, वो कहता रुको भाई उधर भी तुम्हें सब कुछ इधर उधर करना पड़ेगा। ईगो ऊपर आता है तो बोले अरे इतना सब संभव नहीं है, कैसे होगा, तो बीच में रखता है इट। ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सी चीजें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं होती, तो हमारा मन का एक लीवर पुल होता है सिस्टम में, पीछे चला जाता, वो उसको अचेतन मन में भेज देता, अभी संभव नहीं है, सीधा नहीं बोलता लेकिन अचेतन मन में वो बात चली जाती। और उसके बाद जब हम रात को सोते हैं तो ख्वाब बन के सामने आते। बहुत से लोगों के जीवन का अनुभव होगा, बोले स्टेशन पर आज जा रहा था ना तो मेरा एसी का डिब्बा तो छूट ही गया, मुझे तो स्लीपर क्लास पकड़ में आया, कोई कहता वो भी नहीं मिला, पब्लिक वाले में चढ़ना पड़ गया। ऐसा होता है, कई बार हम देखते हैं कि हम स्लिप कर गए, सीढ़ियों से नीचे आ गए, कुछ सोच रहे थे संबंधों में जो बहुत नैतिक थे, अनैतिक कुछ नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था, हमने देखा हम सीढ़ियों से नीचे गए। और ये ख्वाब एक तरीके की हीलिंग प्रोसीडिंग है, हमको वहां हील कर जाता है, नहीं ऐसा संभव नहीं, हम बहुत नीचे गिर जाएंगे अगर ऐसा होगा। अगर हो ही गई है कोई गलती, मान लीजिए ये तो मैंने इसका एक साइकोलॉजिकल पार्ट बताया, और मेरे मन की गहराइयों में समा गया है, मुझसे काश ऐसा ना होता। बहन उर्मिला जी, बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, हम अपने जीवन में अपने तीनों रूपों से जुड़े हुए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो पास्ट में हुए थे या उनका आज हमारे सामने कुछ इस ढंग से जुड़ाव है, हमें जवाब देना ही देना होता है, हमें कुछ उसके लिए करना ही होता है। या कोई हमारे साथ रिवेंज के रूप में कुछ ऐसा कर गया जो बहुत बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत तकलीफ दे होता है, मैं क्या करूं? मैं न कह सकती हूं न सह सकती, बहुत प्रॉब्लम फील होती है। तो उस समय ये सोचना चाहिए कि इस आत्मा का, इस व्यक्ति विशेष का कुछ हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट था, आज उसने मेरे साथ उस तरह करके व्यवहार, उस तरह बात कहकर, उस तरह मुझे उत्तर देकर अपना अकाउंट पूरा कर। एक बार की बात है, मैं एक अनुभव शेयर करती हूँ। यहाँ से कानपुर जा रही थी ट्रेन में, और एक अचानक महिला कोई बैठी हुई थी और वो उतर गई नेक्स्ट स्टॉपेज पर, गाड़ी रुक नहीं पाई थी उसके पहले, बिल्कुल बेघर टाइप थी। और उतरने के बाद अब चलती गाड़ी से उतरी तो नेचुरल धक्का तो लगेगा ना, स्लीपर क्लास में ही बैठी हुई थी मैं, शांति से उस समय भी योग कर रही। वो जब उतरी और उतरने के बाद उसने दरवाजा खोला गाड़ी रुकने के बाद, और एक साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, न जाने कितना कुछ बोला। मैं ओम शांति, वैसे भी शांति में थी, शांति में ही। तो मेरे जो आसपास लोग बैठे थे उन्होंने उसको जवाब भी दिया और डांटा भी और कहा कि देखो हम अभी पुलिस को बुला के तुमको वहां कर देंगे, तुम ये मत सोचना कि बहन जी बोल नहीं रही है। तो वो कह रही थी कि आपने मुझे धक्का दे दिया एक्चुअली। तो सब हंस रहे थे कि ये तो उठी भी नहीं है, धक्का क्या देंगे। कोई बात नहीं, दो मिनट गाड़ी का स्टॉपेज था, आगे चल दी। तो जब गाड़ी आगे चल दी तो वो सब सहयात्री पूछने लगे, बोला क्या हुआ, हम लोग इतना बोले और आप तो कुछ नहीं बोले। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा भाई अरे आज नहीं दिया कभी तो दिया होगा, मैंने ये धक्का उसने आज नहीं दिया कभी दिया होगा, आज वो धक्का दे के हिसाब किताब पूरा कर गई, आज वो मुझे जवाब दे गई, और इसका मतलब मैंने कभी धक्का दिया होगा, आज कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया। इसलिए मैं नहीं बोली, मुझे बात बोल करके बढ़ानी थोड़ी थी। वो सब भी हंस दिए। ऐसा लाइफ में होता है कई बार, हमारे पास्ट अकाउंट, कार्मिक अकाउंट, कोई फाइल अचानक खुल जाती और उस तरह से कोई गलती, कोई ऐसी बात हमारे जीवन में घट जाती है जो भुलाई नहीं भूलती है हमको और बहुत कष्ट देती है। तो प्लीज आप उस फाइल को क्लोज कर दीजिए। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि वो कोई कार्मिक अकाउंट था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और अब उस आत्मा को, उस व्यक्ति को क्षमा कर, ठीक है, जो तुम्हारा हिसाब किताब था तुमने पूरा कर लिया। श्योर, आज से मैं उस परमात्मा से प्रेयर करती हूँ वो तुम्हें भी माफ कर दे और मुझे तुम्हें भूल जाने की शक्ति प्रदान। आप उसे जब क्षमा कर देंगे तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। या आप समझती है नहीं ऐसा जानबूझकर हुआ है तो चलिए आप क्षमा मांग लीजिए। कोई पिछला अकाउंट था, मुझसे गलती हुई, तुमने मेरे साथ ऐसा बोलकर उसको पूरा कर लिया, एक्सक्यूज मी। भगवान को साक्षी रखिए, विटनेस हर जगह जरूरी होती है, और परमात्मा के सामने साक्षी भाव से आप या तो क्षमा मांग लीजिए और या क्षमा कर दीजिए। इस कार्मिक अकाउंट की जो पास्ट का है इसको, फाइल को क्लोज कर दीजिए। अगली लाइफ बहुत अच्छी, बहुत लाइट मूड से गुजरेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनकी वजह से हम अपरोक्ष रूप से कष्ट झेल रहे थे, एक तनाव हर समय महसूस करते थे, जब मेडिटेशन में हमने उसको, परमात्मा को साक्षी रख करके या तो माफ कर दिया और या माफी मांग ली तो हम भी हल्के हो गए और वो फाइल क्लोज हो।
बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और चूंकि आप पेशे से लॉयर हैं तो आपने ये भी बात कह दी कि हमें साक्षी को सामने रखना जरूरी है, एक विटनेस साथ में होना चाहिए, और परमात्मा को विटनेस बना देने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। मुझे कुछ लाइनें भी याद आई, हालांकि लाइनें एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट इसका मतलब यही था कि जिंदगी का सफर बहुत बड़ा है, इसमें खुद कभी माफी मांग लीजिए और खुद कुछ लोगों को माफ करते चलिए तो जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा। और गिल्टी कॉन्शियसनेस से तो यही चीज है कि बहुत बार हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को माफ नहीं करते तो भी नहीं चलता, अपने आप को भी माफ करना है। अगर दूसरों की वजह से ऐसा हुआ है तो उनसे माफी मांग लेना है या और उनको माफ कर देना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। आगे के सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। उर्मिला जी आपका धन्यवाद कहती हैं बहुत सुंदर बात कही दीदी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ।
आपको अच्छी लगी और आपका जीवन बहुत सुखमय हो, मैं यही प्रार्थना करूंगी
जी। अगला सवाल YouTube से है, सुनीता छाबरा हमारे साथ हैं। सुनीता जी कहते हैं कि आई डिड मेडिटेशन एट माउंट आबू एंड डिड प्रैक्टिस फॉर सम टाइम बट वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू इट, हाउ टू मेक माई मेडिटेशन माई लाइफ स्टाइल प्लीज टेल। कहते हैं कि ये माउंट आबू आने का इनको उस अवसर मिला था और उस समय पर इन्होंने थोड़ा बहुत मेडिटेशन प्रैक्टिस भी किया, मगर उसको वो सतत अभ्यास नहीं बना पाई, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब मैं मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहती हूं, तो मैं कैसे करूं, पूछते हैं।
बहुत सुंदर सवाल है, समय की मांग है। सुनीता जी मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां केंद्र होगा। अगर आप जा सकती हैं सो फॉर सो गुड, नहीं जा सकती हैं तो आप जिससे मेडिटेशन करने जा रही हैं ना उसको फैमिली मेंबर बना लीजिए, कैसा रहेगा। देखिए जब हम उस जगत नियंता को अपना अपना बना लेते हैं, सदस्य बनाना अगली बात है, लेकिन जब हम उस जगत नियंता को अपना बना लेते हैं, हमने आरती पूजन करते समय अनेकों बार कहा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, अनेकों बार कहा है तदीयम वस्तु गोविंदे तमेव समर्पिते, हम तुमको समर्पित कर रहे हैं। जब तन मन धन सब तेरा उस परमात्मा का है, सब कुछ वो है, तो उसको अपने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। सर्वसम्मत तुमेव मातश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। हम भटक कहां रहे, आप द्रव्य की स्थिति देख रही हैं, स्थायित्व तो नहीं है इस द्रव्य में, बड़े बड़े करोड़पति रोड पे आ गए। अगर आप वैभव की ओर देख रही हैं तो वैभव उस द्रव्य के आधार से है, जब द्रव्य नहीं है बेस नहीं है तो वैभव कहां रहेंगे। तो हम जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना वो जगत नियंता हमको मुहैया करवा रहा, ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से हाथ खींच लेगा, दाल रोटी मिलने वाली, उसको अपने जीवन का अंग बना ले। और जैसे बहुत ही जी एक छोटी सी बात है, परिचय संबंध स्नेह और स्मृति, जैसे आप अपने उसमें जीवन बच्चों को याद करते हैं, अपने परिवार को याद करते हैं, उसके लिए कोई डायरी पेन की जरूरत नहीं, उसके लिए कहीं बैठने की जरूरत नहीं, उसके लिए कहीं साधना के लिए पहाड़ियों पर जाने की जरूरत नहीं, तो उस जगत नियंता को याद करने के लिए ऐसी क्या जरूरत है। अरे उसको अपना बना लीजिए और आप उसके हो जाइए, तो आप चलते फिरते भी मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए हमारे श्रीनिधि भाई कुछ कहते हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मैं इनकी बात मैं कह दे रही हूँ। साधना जितनी की उतना फल मिलेगा, आज मिल पाया नहीं तो कल मिलेगा, व्यर्थ ही चिंतित अटल विश्वास रख तो साधना से साध्य का संबल मिलेगा। हम हर कार्य के साथ जब जगत नियंता को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जीवन उसकी देन है, ये परिवार उसकी देन है, ये वैभव उसकी देन है, ये कर्तव्य उसकी देन है, हर कर्तव्य के साथ उसे भी साथ ले लीजिए, मेडिटेशन तो 24 घंटे होता चलेगा। फिर से शुरुआत करने के लिए एक बार हैंडल लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि नजदीक के सेंटर पर जाइए, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, और बहुत ही काव्यात्मक तरीके से भी कही कि बहुत बार हम ये चीजें जब देखते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता, मगर उसे अगर हमें रिस्टार्ट करना है, उसकी सही समझ हमें आ जाती है, तो फिर तो हम हर जगह इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। श्वेता सुमन जी हमारे साथ फेसबुक पे लाइव जुड़े हैं और श्वेता जी का सवाल है, ये इस समय का करंट सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे लोगों का सवाल है ये। कहती हैं श्वेता जी, हाउ कैन वी रिमूव डिफरेंसेस विच ऑकर अमंग अवर फैमिली मेंबर्स एज समटाइम्स दीज डिफरेंसेस टर्न टू बिग इश्यूज, प्लीज शो द पाथ। मार्गदर्शन चाहती, कहती हैं कि कभी कभार परिवार के सदस्यों के साथ जब हम रहते हैं तो छोटी छोटी जो डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो समय के चलते चलते बड़े बन जाते हैं, वो बड़ी समस्या हो जाती है, तो इसके बारे में आप मार्गदर्शन करें ऐसा पूछते हैं।
देखिए श्वेता बहन, ये लाजिमी है, जरूरी है। जरूरी क्यों है कि अब हम 24 घंटे साथ साथ, पहले क्या होता था, कुछ टाइम लाइफ का बाहर चला जाता था, आउटिंग पे चला जाता था, अगर जॉब कर रहे होते थे तो जॉब में चला जाता था, कभी हम बिजनेस में निकल गए तो वहां चला गया, तो बहुत सी लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसमें सब कुछ है, जैसे जीवन के अंदर जो भोजन आप करते हैं, अगर हम आपको मीठा ही मीठा खिलाएं तो आप बोर होने लगोगे, हाँ, अगर बहुत नमकीन खिलाएं तो भी बोर होने लगोगे, इसीलिए कहते हैं सट रस व्यंजन, माना सभी स्वाद चाहिए। अच्छा होता क्या था कि अगर मान लीजिए कि कहीं कटता डेवलप हो रही है, आपने देखा होगा, घर से निकले हम बड़े मूड ऑफ करके और निकाल दिया कहां, बाहर जाके, घर वाले सब सेफ बच गए, उस हमारे रिएक्शन से सेफ बच गए, क्योंकि वो जो मूड ऑफ हुआ था, जो रिएक्शन हुआ था, वो कहीं बाहर निकल गया। कई बार बहुत खुश होते हैं ऑफिस में लेकिन हम व्यक्त नहीं करना चाहते और घर वालों को अचानक ढेर सारी खुशियां देते, तो हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं। जैसे जीभ को हर स्वाद अच्छा लगता है, कभी कड़वा कभी मीठा, कभी कसैला कभी खट्टा, तो जीवन के पहलुओं में हमारे भी अनेक तस्वीर के रंग हैं और वो अलग अलग पहलुओं में बटे हुए थे अभी तक, लेकिन जब हम 24 आवर्स घर में ही रहने लगते हैं तो हमारे यथार्थ के पृष्ठ सामने खुलने लग जाते, या यूं कहिए कि उन लोगों के, माना जिनके साथ हम जी रहे हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारे फादर हो, चाहे हमारे हस्बैंड हो, माना जो भी हमारे संबंध हैं पारिवारिक, तो उनका संपूर्ण यथार्थ आज आपके सामने, आपको बहुत खुश होना चाहिए कि सच्चाइयां सामने उजागर हो रही। अब सवाल ये है कि इन सच्चाइयों को डील कैसे। अच्छा है, वो थर्मामीटर लगाते हैं ना, फीवर कितना है मालूम पड़ता है ना, थर्मामीटर लगाने के बाद किसको कितना फीवर है। तो हमें भी हर एक व्यक्ति की थिंकिंग, थॉट्स, प्रोसीजिंग, कैसे वो अपना बिहेव कर रहा है, वो सब पता पड़ रहा है। अभी परमात्मा ने हमको एक बहुत अच्छी सी युक्ति दी और वो युक्ति ये दी है कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर हम सब बहुत खूबसूरती से अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है वो बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है, वो बहुत अच्छी तरह अपना पार्ट बजाता है, भले ही उसके साथ सामने वाला मारपीट कर रहा है, शालीनता नहीं खोता, वो जानता है कि अगर मैं रिएक्ट कर गया, ऐसा नहीं वो रिएक्ट कर सकता है, उसके पास ताकत है, लेकिन जितनी पब्लिक उसे देख रही है ना इस समय ड्रामे की स्टेज पे, वो सब उसके अगेंस्ट हो जाएगी। वो जब पिटता रहता है लोग कहते हैं बेचारा पिट रहा है, और बड़ी उसके प्रति सिंपैथी गेन करने लगते हैं लोग, बहुत सिंपैथी गेन कर ले जाता है वो श्रोताओं की, सभा की, लोगों की। तो हमें क्या, बहुत सुंदर बात परमात्मा ने दी है कि हर आत्मा के अंदर एक नेचुरल सुगंध है, डिवाइन वर्च्यूज हैं, हमारी आत्मा प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है, और आप जरा उन अपने डिवाइन वर्च्यूज को सामने, आप में जो नैसर्गिक गुण हैं, उनको सामने लाइए। और वो हर आत्मा में, वो जो लोग आपसे बिहेव कर रहे हैं, जिनको आज आप देखकर परेशान हैं, अरे ये तो कभी मम्मी ऐसे नहीं बोलते थे, आज क्या हो गया, बोलते पहले भी थे लेकिन तब आप ऑफिस चले जाते थे बोलते पहले भी थे लेकिन तब आप वहां नहीं होते थे, लेकिन आज वो 24 घंटे उनके व्यक्तित्व का हर पहलू आपके सामने। तो मुझे बहुत अच्छा पार्ट प्ले करना है, कोई कैसा भी करे, मुझे उनकी उस बात को भी तटस्थ भाव से देखना है, क्योंकि हम जो जुड़े हैं, हमारी जो बगिया है, इस बगिया में हर एक व्यक्ति अपने से नहीं आया, हर एक व्यक्ति अपने से नहीं आया, उसके पीछे कार्मिक अकाउंट, अपनी बेटी की शादी करने के लिए माँ बाप न जाने कितने साल घर और वर ढूंढते, बच्ची सुखी रहे केवल इसलिए, और पचासों सैकड़ों जगह देखने के बाद सब कुछ ठोंक बजा लेते हैं, शादी करने के बाद 6 महीने के अंदर वापस आ जाती है, या खबर आती है कि वो बहुत दुखी है, प्रताड़ित की जा रही, आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे हम जन्म के साथी तो हैं, लेकिन कर्म के साथी नहीं है, हमने तो बहुत चाहा था कि हमारी बेटी को कभी दुख की छांव भी न छुए, हाँ दुख की धूप न लगे, लेकिन क्या करें हम, कुछ होगा हिसाब किताब। तो जैसे हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए चाहा होगा, तो ये जो हिसाब किताब है पिछला कर्मों का, उसके अनुसार ही हम इस बगिया के सदस्य बने, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, माने ये सब फैमिली के जितने फूल हैं, ये सब पुराने हिसाब किताब के साथ आए हैं, और मुझे इनके साथ बहुत अच्छी तरह जीना है, इन्हें भी खुशबू देनी है, इन्हें भी सुगंधित करना है अपने नैसर्गिक गुण से, और सबको बहुत प्यार से उनके पार्ट को साक्षी होके देखना। जब हम पिक्चर हॉल में सीट पर होते ना, तो उठ करके वहां नहीं जाते, पर्दे पे अभी बताते थे, वहां आनंद लेते हैं, इसका पार्ट ऐसा है, क्या कहीं को यही डायलॉग बोलना था ना, बहुत विदुषी थी, बहुत शस्त्र और शास्त्र में निपुण थी, बहुत कुशल प्रशासक थी, दुनिया ने कोसा उसको कि इसने क्यों राम के अभिषेक को रोक दिया, लेकिन राज्याभिषेक को रोकने के पीछे कोई मंतव्य नहीं था, उस बहन का तो त्याग वास्तव में गायन योग्य है, उसने वो त्याग क्यों किया, अपने नाम का त्याग कर दिया, दुनिया में लाखों नाम है, कोई अपनी बेटी का नाम कहते ही नहीं रखता है, उसने अपने नाम को गंवा दिया, अपने कुल की लाज खो दी, कभी कह नरेश क्या चाहते थे कि मेरी बेटी ऐसा कहे, नहीं, लेकिन क्यों हुआ, वो जानती थी कि पूरे अयोध्या का साम्राज्य कहां कहां से लूप होल्स रख रहा है, कहां कहां राक्षस उपद्रव मचा रहे हैं, कहां से कोई अटैक कर सकता है, तो जब इनका राज्याभिषेक हो जाएगा, अगर ये छोड़कर उसका सामना करने जाएंगे तो राज्य सुरक्षित हो जाएगा, और अगर राज्य को ही देखते रहेंगे तो सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी, इसलिए एक साथ 14 वर्ष का वनवास मांग लिया कि 14 वर्ष के वनवास में राज्य की प्रत्येक सीमा सील बंद हो जाए, जब ये जंगल जंगल घूमेंगे तो इनका अपनी जनता से एक लगाव पैदा होगा, इन्हें जनता की यथार्थ स्थिति का ज्ञान हो जाएगा, और फिर जब ये कोई निर्णय लेंगे तो वो यथार्थ के बहुत करीब होगा, अगर सीधा राज्याभिषेक हो जाएगा तो इन्हें स्वयं ज्ञात नहीं होगा कहां कौन है और कौन नहीं, विचार कीजिए। तो वो तो उसने अपने जीवन का संवाद बोला, वरदान मांगा, डायलॉग बोला, बदनाम हो गए विचार। तो है क्या कि हमें अपना पार्ट, हर एक हमारे साथ जो भी बोल रहा है, कर रहा है, जी रहा है अपने हिसाब से, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको यथार्थ का पता लग गया, और जब कोई यथार्थ पता लग जाता है तो लोग बड़े गोपनीय रखते हैं उसको और बड़े अच्छे ढंग से चलते हैं, तो उसी अच्छे ढंग से अगर हम चलेंगे, नैसर्गिक ढंग से चलेंगे, तो हमारी खुशबू उन्हें भी खुशबूदार कर देगी। अगर हम समझेंगे कि ये आत्मा है तो प्रेम संपन्न, लेकिन थोड़ा सा इस पर राख आ गई है, जैसे शोले पे राख आ जाती है ना, थोड़ी सी राख आ गई, थोड़ी सी इसके ऊपर परिस्थितियों का असर हो गया, इसलिए ये बहुत टीजिंग वे में बोल रही है, कोई बात नहीं, अभी कर, अभी नहीं हो पाया है, शाम को हो जाएगा। तो जब हम उनको दिलासा देते हुए उत्तर देते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाती हैं, ठीक है एक शब्द बोलेंगी, अरे अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, बोला नहीं शाम को हो जाएगा, तो एक संतोष हो जाता है। अगर हम भी रिएक्ट कर जाते हैं, क्यों भाई आप समझ नहीं रही है कि लॉकडाउन चल रहा है, आप समझ नहीं रही है कहीं मिल नहीं रहा है, शॉप्स बंद है, आप समझ नहीं रही है, अरे उनको भी तो समझो, उन्हें खांसी बहुत तेज उठ रही है, दवा चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो ये हो सकता है कि वो अपनी आदतों से मजबूर हो, तो हमें उनको समझते हुए उन्हें संतुष्ट करते हुए चलना है, क्योंकि अगर हमने रिएक्ट किया, हम परिवार की धुरी, हमारी जो बहनें हैं वो परिवार की धुरी होती हैं, और वो पूरे परिवार की धुरी बनकर हर एक सदस्य को एडजस्ट कर, वो एडजस्टमेंट पावर यूज करके देखिए डिफरेंसेस मिट जाएंगे।
बहुत ही अच्छी बात कही आपने दीदी, और ये जो आपने कहानी बताई, बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को इस परिवेश में नहीं देखा होगा, और शायद ये हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि घर के जो सदस्य हैं उनकी कहानियों को हम जानते ही नहीं है, और जब हम उसको एक ऑब्जर्वर के रूप में साक्षी होकर देखते हैं कि वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनका नजरिया भी कुछ अलग हो सकता है, तो चीजें समझने आसान होती हैं। बातों बातों में एक घंटा बीतने को आ गया है और 7 बज चुके हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछे हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इस कार्यक्रम में नहीं शामिल कर पाऊंगा वक्त की कमी के कारण, मगर आज हमारे जिन भी दोस्तों ने फेसबुक पर और यूट्यूब पर, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जहां पर भी आप देख रहे हैं, जो भी आपने फीडबैक्स दिए, कमेंट्स दिए, सवाल पूछे, उन सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारे सभी दर्शकों और साथियों की तरफ से, हमारे फ्रेंड्स की तरफ से, मैं मनोरमा दीदी जी का धन्यवाद करता हूं जो प्रयागराज से, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ सीधे जुड़े और हमारे सभी दोस्तों को अपना मार्गदर्शन दिया। आपने बहुत सारी अच्छी बातें सुनाई और बहुत सरल तरीके से जीवन की समस्याओं को डील करने के बारे में प्रेरित किया। अब मैं दीदी जी से अनुरोध करता हूं कि आप जाते जाते हम सबके साथ कुछ समय हमें योग कराएं, मेडिटेशन कराएं, और मेडिटेशन में आप गाइड करें, और आपके साथ मेडिटेशन करने का सौभाग्य हमें भी मिले, जो हमारे दोस्त हैं वो सभी मेडिटेशन करना भी चाहते हैं। दीदी जी,
बहुत अच्छी बात है, आइए हम सब जहां भी हैं थोड़ा स्थिर होकर के बैठेंगे, और साथ साथ उस जगत नियंता के पास चलेंगे, कोशिश करेंगे उस जगत नियंता से मधुर संबंध जोड़ें। तो ये जो कॉस्ट्यूम है पंच तत्वों का, इसको हम थोड़ी देर के लिए रिमूव करेंगे, और रिमूव करते हुए खुद के नेचुरल नैसर्गिक रूप में आ जाएं। ओम शांति। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा राजा, ब्रह्मकुटी के सिंहासन विराजमान हूं। आइए इस काया से भिन्न होकर मन और बुद्धि के साथ हम उस प्रभु पिता की ओर चले, जो इस मनुष्य लोक के पार सूक्ष्म लोक से भी पार अखंड ज्योतिर्मय परम धाम का वासी, नीले आकाश के पार जहां चारों सर्वत्र शांति की शांति ज्योति पुंज परमपिता परमात्मा जो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप उस जगत नियंता की संतान आनंद स्वरूप उस कल्याणकारी पिता की कल्याणकारी संतान की। मैंने उस जगत नियंता का हाथ और साथ पकड़ लिया है, मैंने जान लिया है, मान लिया है, उस प्रभु परमात्मा को पहचान लिया, जीवन के हर पल में मैं उनका साथ बनाए रखूं और व्यवहारिक संसार में प्रत्येक कर्म उन्हें साथ रखकर ही कर। उस आनंद के सागर की स्मृति के साथ हर पल आनंदमय हो, आप सब भी उस प्रभु पिता का हाथ और साथ पकड़ कर जीवन यापन करें, यही शुभ भावना शुभकामना। आइए वापस सृष्टि मंच की ओर चले, पुनः अपने शरीर रूपी रथ में प्रवेश करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।